सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
ओम शांति। हम बहुत पद्मा पद्म भाग्यशाली तो हैं, लेकिन आज डबल भाग्यशाली हैं, क्योंकि आदरणीय राजू भाई साहब हमारे बीच पुनः पधारे हैं, तो हम करतल ध्वनि के साथ बड़े दिल से खुशी से उनका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भाई साहब को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यही हमको बाप दादा के महावाक्य हम तक पहुंचाते हैं। जैसे भोजन तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जब बाप दादा के महावाक्य, जिनके लिए कहते हैं कि एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है, और वो हम तक नहीं पहुंचे, मिस हो जाए, तो हमारा जीवन जीवन नहीं रहता, अधूरा महसूस होता है। और एक दिन भी मिस नहीं करते, यदि मिस हो जाता है तो खालीपन महसूस होता है। तो ऐसी महान विभूति हम सब के समक्ष हैं, जिनके लिए बाप दादा का अनमोल रतन कहें, बाबा के नैनों का नूर कहें, बाबा के मस्तक मणि कहें, जितनी महिमा भाई साहब की उतनी ही कम हो, इतनी अधिक महिमा भाई साहब की है। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच पुनः आए हुए हैं, तो हम उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। अभी भाई साहब हम सब के बीच में अपने महावाक्य रखेंगे और सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। मधुबन की भट्टी का पूरा पूरा लाभ आप सब ले रहे हो। इस वरदान भूमि पर भट्टी करने का भाग्य अनुभव भी हो रहा है, और आज बाबा ने विशेष कहा कि कभी कभी अपने भाग्य की महिमा खुद भी कह लिया करो। किया सभी ने अपने भाग्य की महिमा, कितना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान ने हम सबको अपना बनाया, अपनी श्रेष्ठ पालना दी, पढ़ाया, श्रेष्ठ मत दी, कदम कदम पर गाइड बनकर हम सबको अपने साथ ले चल रहा है। तो आज का मेरा विषय था, बहन ने सुनाया नहीं, ब्राह्मण जीवन की खुश नसीबी। खुश नसीब तो हम सब है ना, खुशी की खुराक खाते हैं और सबको खिलाते हैं। कैसा श्रेष्ठ नसीब है जो इतना श्रेष्ठ भाग्य विधाता ने हम सबको दिया, और हमारे हाथों में नसीब बनाने की कलम भी दे दी। जिसका नसीब बनाना चाहो बना दो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं जो खुद भी अपना भाग्य बना रही हैं, खुशी की खुराक खा रही हैं, खुशी के खजाने से खेल रही हैं, और संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं को भी खुशियों से भरपूर कर देती है। चारों तरफ विश्व के अंदर गम की लहर है, दुख है, कोई भी निश्चिंतता नहीं है, चिंताओं की चिता पर विराजमान आत्माएं। बाबा ने हम सबको उस चिता से उठा लिया है। कोई चिंता क्या? बीती का चिंतन नहीं और आने वाले कल की चिंता नहीं। क्यों क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वर्तमान समय बहुत अच्छे से अच्छा हम सब बिता रहे हैं, अच्छे से अच्छा भाग्य बना रहे हैं। जिनका वर्तमान समय अच्छा है उनका कल अच्छा होना ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम सबको बाबा ने चिंता मुक्त मणि, खुश नसीब, खुश नुमा बनाया है। अब सिर्फ ये खुशी कायम रहनी चाहिए, सदाकाल रहनी चाहिए। श्रेष्ठ संग से, श्रेष्ठ प्राप्तियों से खुशी का अनुभव तो हम सब करते हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा जब पेपर आता है तो उस पेपर के आधार से खुशी गायब हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा। या कभी पूछो सदा खुशी रहती है तो क्या उत्तर देते हैं, कभी कभी रहती है, सदा नहीं रहती। तो बाबा की इस वरदान भूमि से सभी ये वरदान लेकर के जाना कि हम सदा खुश नसीब आत्माएं हैं, खुशी हमारे जीवन की सांस है ब्राह्मणों की। बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, बच्चे हिमालय जितना पहाड़ भी अगर पेपर बन करके आ जाए, शरीर भी छूट जाए, फिर भी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो हम सब बाबा की ऐसी पालना के अंदर पल रहे हैं जो बाबा ने हमारी सब चिंताएं हर ली, सब फिक्रातें ले ली, हम बाबा के बन गए, बाबा ने अपनी गोद में बिठा लिया। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा के दिल से ये बात अवश्य निकलनी चाहिए, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता, वाह वाह ड्रामा वाह। निकलता है सबके अंदर से, निकलता है कि नहीं, ऊपर ऊपर से है ऐसा भाग्य। सचमुच महसूस होता है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ भाग्य हम संगम युगी ब्राह्मणों का है। देवताओं को तो दुख का पता ही नहीं है, उनके पास गम आता ही नहीं है, इसलिए जहां भेंट नहीं है वहां पर अनुभव नहीं है। हम सबके सामने भेंट है कि सारी दुनिया कितने चिंताओं में एकदम डूबी हुई है, कितने प्रकार के गम हैं, कितने प्रकार के दुख हैं। एक बार हमारी दादी जी ने हमको काम दिया कि तुम एक दुखों की लिस्ट निकालो। मैंने कहा दादी मुझे पता नहीं दुनिया में दुख क्या है। बोले अच्छा सुखों की लिस्ट निकालो। तो कम से कम 70 प्रकार के दुख और 70 प्रकार के सुख, खुशी, वो पॉइंट्स निकाली थी हम लोगों ने, एक वर्कशॉप किया था। आप सभी भी ऐसी वर्कशॉप कर सकते हो अपने सेंटर्स पर, क्योंकि दुनिया के अंदर दुख पहाड़ जैसे गिरने वाले, बाबा कई बार कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरेंगे। और सचमुच कभी कभी जब समाचार सुनते हैं, मान लो कोई बहुत अच्छा एक परिवार है, मिसाल के तौर पर आराम से कमाई है, सब साधन है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन अचानक कोई ऐसा पेपर आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शरीर छोड़ देता, और अधिकतर जिसके परिवार में कोई इकलौता होता है और वो अचानक चला जाता, माँ बाप दादा दादी सब परिवार है, और अगर वो बेटा चला गया अचानक जो पूरा प्रॉपर्टी का मालिक है, तो उसके ऊपर दुख का पहाड़ अनुभव होता है, ऐसा दुख गिर जाता है जैसे लगता है इस जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। वो खुद महसूस करता है मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया करके। बेचारा बात भी करेगा तो भी रोएगा, देखेगा तो भी रोना शुरू कर देगा। ना इतना अधिक इस कलयुग के अंदर इस अकाले मृत्यु के कारण दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। बाबा ने अपने बच्चों को अजर अमर अविनाशी, कभी मरती नहीं आत्मा, ऐसा ज्ञान दे दिया। हमारे बाबा के परिवार जहां पर बच्चे हैं, उनके परिवार में ऐसी कोई घटना घटती है, बहुत अच्छा लडोल एक रस रह करके उस पेपर को पार कर लेते। लोग कहते हैं इनका दिल पत्थर तो नहीं हो गया, ये कहां से ऐसा ज्ञान इनको मिल गया जो कभी आंसू तक भी नहीं बहा रहे हैं। एक परिवार के अंदर एक लौता बेटा था, अभी अभी की बात है, थोड़े समय के पहले घर में गीता पाठशाला थी, अभी मैं होके आया 15-20 दिन पहले ही, घर में गीता पाठशाला थी, एक बेटा 17 साल की उम्र का था और मधुबन में भी लिटरेचर डिपार्टमेंट में काफी समय सेवाएं देता था, बीच बीच में आता था, बहुत प्यार था मधुबन से। उसने अपने माँ बाप से जिद की कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। माँ बाप ने बहुत समझाने का प्रयास किया, तुम तो घर का मालिक है, फोर व्हीलर खड़ा है, तुमको नया चाहिए तो नया लेके दे देते हैं, नहीं मुझे तो बाइक चाहिए, बस मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए। जिद करके माँ बाप से मोटरसाइकिल ली और एक दिन बहुत स्पीड में जा रहा था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो तुरंत मर गया, बिल्कुल स्पॉट मौत हो गई। एक ही बेटा 17 साल का। अब उसका जब यहाँ फोन आया तो यहाँ दुख की लहर छा गई, दुख की लहर तो हुई ना परिवार के अंदर, लेकिन उनके माँ बाप इतने निश्चिंत, इतने बाबा के प्यार में खो गए, इस आत्मा का इतना ही पाठ था, पूरा हो गया। दादी से बात कराई, गुलजार दादी से फोन पर बात कराई, इतनी हिम्मत उसको मिली। अभी उसने यहाँ भी एक बाबा का घर बना दिया, वहां भी सेंटर को घर दे दिया, अभी कौन है बाबा वारिस है। लेकिन एकदम ऐसी परिस्थितियां जब इस कलयुग के अंदर किसी पर घटती हैं, तब पता चलता है कि इसको खुशी का खजाना कहाँ तक मिला है, कितना कायम रख सकता है, क्योंकि ऐसी प्रकार की घटनाएं कलयुग के अंदर आम है, खास नहीं आम, बिल्कुल जैसे नेचुरल हो रही है। और बाबा अपने बच्चों को इस खुशी के खजाने से इतना भरपूर कर रहा है कि बच्चे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, इतनी तुम्हारे पास शक्ति हो जो पेपर आए और ऐसे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पार कर लो, पेपर आया आगे बढ़ जाओ, है इतनी शक्ति जमा की है, योग का बल, ज्ञान का बल, शक्तियों का बल। जिसके पास ऐसा बल है, कलयुग का कोई भी बड़े से बड़ा पेपर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, सहज सूली भी कांटा हो जाती। बाबा के साथ का अनुभव होता है, उसकी शक्तियों का अनुभव होता है, परिवार की मदद का अनुभव होता है। हम सब इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, कभी अगर वर्णन करो अपने भाग्य का, चिंतन करो, सबसे बड़ा भाग्य हमको बाबा ने ये ऐसा तन दिया है जो इस तन से हम प्रभु मिलन मना सकते हैं। कोई कहे मेरा तन तो रोगी है, बीमार है, मैं बुजुर्ग हो गया उसके बाद बाबा मिला, जवान होता तो बड़ा अच्छा होता। बाबा कहता बच्चे भेंट मत करो, जो है तुम्हारे पास उतना बहुत है, इसमें संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि इस तन के द्वारा कम से कम बाबा की मुरली सुन रहे हो, भगवान से मिलन मना रहे हो, भगवान की सेवा में कुछ सहयोग दे रहे हो, माया से बचे हुए हो। तन का भाग्य, हर एक अगर तन को बाबा के कार्यों में लगाता है तो उसका तन अपने आप उसको साथ देता है, निरोगी होकर के रहता है। तन का भाग्य संगम पर हम सब ब्राह्मणों को मिला हुआ है, मैं समझता हूँ कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जो कहे मैं तो बहुत तन से एकदम बीमार हूँ, बिस्तर पर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाबा तचा तुम कुछ भी नहीं कर सकता है, तुझको बाबा का परिचय मिल गया, मन मना भव, योग तो कर सकता है, लेटे लेटे भी बाबा को याद करो तो अच्छी मनसा सेवा तो कर सकते हो, कितना बड़ा भाग्य है ये जो बाबा हमको मिला और हम सबको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी समझ दी जो कोई भी पेपर को हम सहज पार कर सकते हैं। इसलिए तन का भाग्य, फिर श्रेष्ठ मन का भाग्य। आज मन कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितने शास्त्र पढ़ रहे हैं, कितना अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पूछो मन एकाग्र होता है? सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है? मन भटकता है, मन घोड़ा है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा तूफानी है, ये भगवान का कहां ध्यान करने देता। हम लोग अगर बैठते हैं बाबा की याद में, कुछ सेकंड भी मन एकाग्र हो जाता, कितना आनंद का अनुभव होता है, कितना सुख का अनुभव होता है, मन हमारा कहना मानने लगे, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? मानता है सबका कि नहीं? चेक करना, मानता है? कोई कोई ऐसे करते हैं, कोई नहीं, सब नहीं हाथ उठाते हैं। देखना इसको, साक्षी होकर के देखो कि जब हम बैठते हैं बाबा की याद में, मुरली सुनने, क्लास करने, योग करने, तो ये मन मेरा कहना मानता है, रुकता है कि इधर उधर भटकता है, ये वो जिधर जहाँ कोई हिसाब किताब होंगे, जहाँ कोई संबंध होंगे, उधर उधर भटक जाएगा। लेकिन अगर इसको हमने बहुत प्यार से अच्छा अच्छा भोजन खिलाया है, अच्छी संभाल की है, अच्छा चिंतन दिया है, तो मन बहुत सदोरा, बहुत मीठा कहना मानने लगता है। अभी अभी को चल परम धाम ले जाएगा, वाहन है ना, इसको भक्ति में क्या कहा है, अंतर मन वाहन। ये मन जो है अंतर वाहक शरीर बन जाए, वाहक, इसी से हम सब यात्रा करते हैं, इसी से हम सेवा करते हैं, इसी से सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वैकुंठ वतन सबकी सैर कर सकते हैं। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं जो मन हमारा कहना मानने लगा है। सोचना, विचार करना, धन का कितना बड़ा भाग्य है जो आज बाबा ने हमें दिया, वो बाबा के कार्य में सफल हो रहा है। एक एक पैसा मुहर बराबर, संगम युग पर जो कुछ है वो पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन वो मुहरे हैं। सतयुग के अंदर मुहरे चलती थी ना, गिन्नी चलती थी, पहले जमाने में भी गिन्नी का प्रचलन था। तो ये जो भी इस समय संपत्ति है, अगर वो बाबा के कार्य में सफल हो रही है, व्यर्थ नहीं जा रही है, ये बाबा की अमानत है। बड़ा भाग्य है जो वो धन मिला और वो बाबा के कार्य में सतयुग बनाने में मेरा कुछ सहयोग लग रहा है। बाबा को दे नहीं रहे हम, ध्यान रखना, कभी भी ये भूल से नहीं कहना बाबा को मैंने इतना दिया। दोगे क्या, आपके पास है क्या? बाबा कहता है भी तो क्या, दो नंबर का पैसा, काला धन, कखपन, तुम मुझे क्या दोगे? तुम अपना भाग्य बनाना चाहे तो बीज बोलो, बीज बोने का संगम है। तो सबसे बड़ा भाग्य है जो हमारा धन भगवान के कार्य में, नई दुनिया बनाने में सफल हो जाए। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, और सबसे बड़ा भाग्य जो हमको इतना अच्छा सुंदर अपना परिवार मिला है, जन का भाग्य। किसके साथ हमारा संबंध है, किसके साथ हम उठते बैठते फोन करते बात करते, जो पवित्र आत्माएं हैं। कलयुग में तो आज भी बाबा कह रहे थे, बच्चे पतितों की पतितों से लेन देन, उनसे दोस्ती, उनसे हिसाब किताब, उनसे संबंध, और हम सब पवित्र आत्माएं जो भगवान के बच्चे हैं, उनसे हमारा संबंध है, स्नेह है, कुछ भी लेन देन भी है। तो ये जन का भाग्य, उसमें भी हम सब बड़े खुश नसीब हैं, जिस आत्मा को तन मन धन जन हर प्रकार से बाबा ने संपन्न बना दिया, भरपूर कर दिया। कल जब बाबा मधुबन निवासियों की महिमा कर रहे थे, बहुत एक अच्छा शब्द बाबा ने प्रयोग किया, बच्चे तुम बाप समान दाता हो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। हम लोगों के जीवन का अनुभव है कि बाबा ने हम सबको दाता बना दिया, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, संपन्न है, भरपूर है। स्वर्ग की महिमा बाबा ने जो की कि सतयुग के अंदर सर्व खजाने भरपूर होंगे, लेकिन संगम पर भी हम बच्चों को बाबा ने हर गुण से, हर शक्ति से, हर ज्ञान के खजाने से, स्थूल और सूक्ष्म हर प्रकार से संपन्नता का अनुभव कराया है, कोई कमी नहीं। हम तो कभी कभी ये कहते हैं, संकल्प करने के पहले चीज हाजिर हो जाती है, संकल्प भी नहीं करना पड़ता है। वो समय अभी आ गया यज्ञ के अंदर कि अगर कोई आवश्यकता है तो बाबा कहीं ना कहीं से वो पूरी कर देता है। एक बार बाबा ने कहा था, मैं बच्चे इच्छाओं को पूरा नहीं करता, बच्चों की इच्छाएं तो ऐसे जन्म लेती हैं जो एक पूरी करूंगा तो दस खड़ी हो जाएंगे, आवश्यकताएं जरूर पूरी करता हूं, इच्छाएं नहीं पूरी होती। इसलिए हमारे जगह जगह पर स्लोगन लिखे होते हैं, इच्छाएं कम कर दो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, एक कार आई और इससे अच्छी आ जाए, एक मकान बनाया और अच्छा मकान, क्या यही खुशी का साधन है? आज है कल खत्म हो जाएगा। अगर स्थूल चीजों में हम खुशी को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो चीजें विनाशी हैं, और विनाशी अल्पकाल का सुख देंगी और फिर सदाकाल का दुख ही दुख है। इसलिए बाबा कहता है अल्पज्ञ चीजों में, विनाशी चीजों में सुख की कामना लेकर के मत घूमना, नहीं तो उनको कहते हैं ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा समझते हो? माताएं समझती हैं मृग तृष्णा? सिंधी में उसको कहते हैं रुन्नी का पानी। ये जो रेत का रेतीला पहाड़ होता है या रेतीला मैदान होता है, आप लोग इधर हरे भरे मैदान में रहते हो, एक बार मैं यहाँ कच्छ की तरफ गया था, रण है, पूरा रण, हजारों मील वो चमकता हुआ रण, नमक वाला, चांदनी रात में आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कोई पानी चमक रहा उधर, बहुत भरा हुआ तालाब है और है कुछ नहीं, रेत है। जो गर्मी के दिनों में जब हिरण को प्यास लगती है, मृग को प्यास लगती है, तो उस रण के अंदर पानी ढूंढने के लिए भागता है, वो बहुत तेज दौड़ता है और उसको दिखाई देता है क्योंकि धूप के अंदर वो रेत चमकती है पानी जैसी, तो समझता है वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी, भागता जाता भागता भागता, गर्मी के अंदर प्यासा बेचारा तड़प तड़प के मर जाता, पानी नहीं मिलता। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। उसको तृष्णा है, प्यास लगी हुई है, लेकिन पानी नहीं है। इस कलयुग के अंदर कोई भी हद की कामना रख करके अगर आप दौड़ लगा रहे हो पैसा 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 पैसा, तो वो मृग तृष्णा है, आएगा दुखी करेगा। जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। इसलिए खुश नसीब वो है जो अपने भाग्य को देख करके, बाबा आपने मुझे बहुत दे दिया, बहुत माला माल कर दिया, किसी से भेंट किया तो खुशी नहीं रहेगी। जिसने जिससे भेंट किया है वो सदा दुखी है, इसके पास ऐसा है, इसके पास ये है, इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, इसकी नेचर बड़ी अच्छी है, इसका क्लास कराने का तरीका, किसी से किसी चीज में भी भेंट किया आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए जितना बाबा ने मुझे दिया है वो बहुत कुछ दिया है। हर एक आत्मा का स्पेशल विशेष जिस ड्रामा के अंदर अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। कितना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया, ये एक एक रत्न करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का है, भेंट करोगे खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए मुझे जो बाबा ने दिया है, बाबा अपने दाता ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, जितना है उसमें मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, खुश नसीब हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अपनी प्राप्तियों का चिंतन करना, दूसरे की प्राप्तियों से भेंट नहीं करना। भेंट करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा शत्रु ईर्ष्या एक बहुत काली आग है। अगर कोई ईर्ष्या करने लगे किसी के साथ, कोई के भाग्य के साथ, कोई के आगे बढ़ने में, तो कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए हरेक आत्मा का इस ड्रामा के अंदर अपना और विशेष पार्ट है। मेरा इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कभी किसी से भेंट नहीं करो। जितना मुझे दिया है बाबा ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी बुद्धि को, अपने तन मन धन को, अपने यथार्थ विधि से जो कुछ है, कहा जाता है जितनी चादर उतने पैर पसार, आगे निकलोगे दुखी हो जाओगे। जो कुछ दिया है बाबा ने उसको सेलेक्ट करो, सेटिंग करो, उसको मैनेज करो। इतना पैसा है उसको कैसे यज्ञ में सफल करूं, कैसे स्वयं के लिए रखूं, स्वयं के परिवार को चलाऊं, मैनेज करना जिसको आता है वो कम पैसे में भी बहुत सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। और नहीं तो कितना भी आता जाए, एक तरफ आता जाएगा, दूसरी तरफ उड़ाता जाएगा, पैसा कभी खुशी नहीं दे सकता है। इसलिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करना कि जितना मेरे पास है उतना बहुत है, इसको कैसे मैं मैनेज करके अपने आप को सेट करके चलाऊं, ये कला आ जाए बस। देखा देखी नहीं करना, वो इतना करता मैं ऐसे करूं, वो ऐसा करता मैं ऐसे करूं, उसकी अपनी तकदीर है, मेरी अपनी तकदीर है। हम किसी के भाग्य से भेंट करेंगे तो कभी भी खुशी का अनुभव नहीं होगा। इसलिए खुश नसीब आत्माएं हैं अपनी आत्मचिंतन से, स्वचिंतन से आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। जो अपने में विश्वास रखने वाली आत्माएं है ना, वो दूसरे के भाग्य से रीस और रेस नहीं करती। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब कोई विशेष कार्य के हम निमित्त बनते हैं। कोई भी विशेष कार्य करके देखो, आपकी खुशी एकदम बढ़ जाएगी। जो किसी ने नहीं किया है हम करके देखें, नवीनता और वैरायटी हमारी खुशी को बढ़ाते हैं। खुद उमंग उत्साह में आ जाओगे, लेकिन कुछ करोगे ही नहीं और सोचोगे मुझे खुशी मिल जाए तो वो खुशी बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि मैं कुछ न कुछ ऐसा कार्य करूं जो कार्य की सफलता मुझे अविनाशी खुशी दे के जाए। जिस आत्मा को सर्व आत्माओं की दुआएं मिलती, जो आत्माएं दूसरों को खुशी बांटते हैं, एक कहावत एक मंत्र के रूप में याद रखना, खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बढ़ाने एक दूसरे का बांट लेने से कम हो जाता है। अगर हम अपनी खुशी को बढ़ाना चाहते हैं तो जो कुछ मुझे खुशी मिली है और दूसरों को देंगे तो हमारी कई गुना वो खुशी बढ़ जाएगी। सिर्फ अपने में खुश रहेंगे, दान उसका करना नहीं आएगा तो उतनी ही रहेगी जितनी है। अगर हम उसको बढ़ाना चाहते, जो संबंध में आए, जो संपर्क में आए, तो खुश कर दो, उसकी महिमा करके, उसकी प्रशंसा करके, उसकी विशेषताओं का वर्णन करके। कई बार कई बार हमारी नजर कमियां देखने पर अधिक जाने लगती है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। और अगर परिवार में हम एक दो की कमियों को देखते हैं, वर्णन करते हैं, तो परिवार को देखने की खुशी का अनुभव हम नहीं कर सकते। जब आपस में मिलते हैं, जो आंतरिक प्यार है वो खुशी का अनुभव कराता है। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्यार करना सीख जाएं, वो प्यार ही खुशी का आधार बन जाता है। और बाबा ने हम सबको एक चश्मा दिया है और वो हर एक को पहन के रखना चाहिए। वैसे दुनिया में कहते हैं चश्मे की मजबूरी भी है, चश्मे का फैशन भी है। और बाबा ने अपने बच्चों को दिया है विशेषता देखने का चश्मा। हर आत्मा में कुछ न कोई विशेषता है। इतना बड़ा जो बाबा का यज्ञ, इतना बड़ा जो कार्य चल रहा है, बाबा ने एक एक बच्चे की विशेषता को देखा, चाहे उसके अंदर 35 अवगुण क्यों न हो। एक तो है गुण जो भगवान को उसने पहचान लिया। अगर उस भगवान को पहचानने की आंख उसके पास है, उस विशेषता को भी उसने सेवा में लगा दिया, तो सब विशेषताएं आ जाएंगी। तो बाबा ने अपने बच्चों की कोई न कोई विशेषता देखी, उनको कार्य में लगाया, और इतना बड़ा यज्ञ जो इतना विस्तार को पाया है, वो अपने बच्चों की एक एक विशेषता को कार्य में लगा करके इतना बढ़ाया है। हम सभी ब्राह्मण परिवार अगर सचमुच बहुत अच्छे खुश नसीबी का अनुभव करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी आत्मा इस ब्राह्मण परिवार में नहीं है जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो। है ऐसा कोई? कोई कैसा भी हो, भले आपकी नहीं बनती, आपके हिसाब किताब हो सकते हैं, आपका कोई संस्कार स्वभाव का टकराव हो सकता है, लेकिन हर आत्मा विशेष है। इसलिए उस विशेषता पर नजर जाएगी तो आप अपने आप को खुश रख सकेंगे। हमेशा ध्यान रखो मेरी विशेषताएं क्या हैं, और जो कभी भी उन विशेषताओं से प्राप्तियां की हों, किसी में हिम्मत की विशेषता है, किसी में निश्चय की विशेषता है, किसी में दृढ़ता की विशेषता है, किसी में सफल करने की विशेषता है, सफल कराने की विशेषता है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। एक बार हम लोग मधुबन निवासियों ने 5-5 का ग्रुप बनाया। हमने कहा कभी भी जब हम आपस में मिलें, एक बहुत प्यार आपस में उमड़े, एक स्नेह की उत्पत्ति हो, उसका आधार है हमें हरेक की विशेषता का पता होना चाहिए। कई बार हमको पता नहीं चलता है कि ये जो हमारे संगठन में ब्राह्मण आया, ये जो जुड़ा इस विद्यालय के साथ, इसकी क्या विशेषता है। समझ लेते हैं तो आता है, मुरली सुन के चला जाता है, क्लास करके चला जाता है, कोई सेवा नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। लेकिन यदि उसकी विशेषताएं आंतरिक देखने का हमारा अभ्यास हो जाए, तो वो आत्मा जिसको भगवान ने चुना जरूर कोई विशेष आत्मा है। तब उसको इस संगम पर इतना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य मिला है जिस पर भगवान की नजर गई है। तो जब हमने एक वर्कशॉप ऐसी की, तो पीस पार्क में हमारे मधुबन का संगठन था, और उसमें लिखने का काम हमने दिया कि बोलो कोई नहीं, आप इसकी 5 विशेषताएं लिखो, आप इसकी लिखो, आप इसकी लिखो, आप इसकी लिखो। फिर वर्णन करते करते सबसे पूछा, तो एक भाई ने लिखा कि मैं कोई हरेक आत्मा से अलग आत्मा हूं। मैं कैसे अलग हो? कहता है भगवान ने मुझे चुन करके अपनी छत्रछाया में रखा, हमें खिला रहा है, पिला रहा है, संभाल रहा है, बीमारी में पूछ रहा है, उसका हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो जरूर कोई हमने अलग से भक्ति की होगी, अलग से भगवान को हमने याद किया होगा, तब तो हमारे को इतना बड़ा भाग्य मिला है। आप सभी भी कभी इस बात पर चिंतन करना कि आज बाबा का ज्ञान अगर मेरे को समझ में आया है। कई बार बाबा ये बात अंडरलाइन कराते हैं, जो बहुत पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति भक्ति में की है, वो मेरे ज्ञान में इस समय तीखे जाएंगे। अगर वो तीखा नहीं जा रहा है, माना इसकी भक्ति कम है। बाबा हमको उस नजर से देखता है कौन बच्चा कितनी भक्ति का फल ले रहा है, और उस विशेषता को देख करके बाबा उस विशेषता से काम करा रहा है। हम सभी भी हरेक आत्मा में जो विशेषताएं हैं, अगर सचमुच विशेषता देखना शुरू कर दें, तो कभी भी किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से वैर नहीं, सब भगवान के प्यारे, हम सबका ये बहुत प्यारा परिवार है। संगम पर हम इकट्ठे हुए हैं, जहां जहां 84 जन्म में जिसके साथ जो पार्ट प्ले किया, संगम पर आके हम सब इकट्ठे हो गए आके, जरूर कुछ तो हिसाब किताब होगा। अब मैं सोचूं मुझे ये बहन नहीं चाहिए, मुझे ये भाई नहीं चाहिए, मुझे ये केंद्र नहीं चाहिए, मुझे ये स्थान नहीं चाहिए, और अपने मन को दुखी करता रहूं, सोच सोच करके उसकी प्लानिंग करता रहूं, व्यर्थ चिंतन करूं, पर चिंतन करूं, इधर वर्णन करूं, उधर वर्णन करूं, कब सुख का अनुभव करेंगे? क्यों ऐसे हम ख्याल करें, ये जाएगी, वो आएगी, बड़ा अच्छा सेंटर चलेगा, कहां से चलेगा, जहां हिसाब किताब होगा वही आके पड़ेगी आके। इसलिए जो मिला है, जो भाग्य है, उसमें देख करके अपने आप को प्रसन्न रहना सीखो। उसमें मैं उसका कैसे सहयोगी बनूं, उसको कैसे आगे बढ़ाऊं। कभी भी बाबा के कार्य को मेरे किसी कार्य कारण से विघ्न न पड़े। मैं बाबा के कार्य को अंगुली देने के लिए हूं, आगे बढ़ाने के लिए हूं, मैं उसको ब्रेक न दे दूं। अगर सचमुच भगवान की दुआओं से आंतरिक सुख का अनुभव करना है, खुशी का अनुभव करना है, तो भगवान के कार्य में कोई न कोई प्रकार की अंगुली दे करके देखो, मदद करके देखो। मदद करोगे और तुरंत खुशी का अनुभव होगा, और अगर विघ्न रूप बनोगे तुरंत सजाओं का अनुभव होगा। ये बहुत सूक्ष्म मशीनरी है। कोई भी अवज्ञा हुई, कहीं से भी श्रीमत का उल्लंघन हुआ, तो धर्मराजपुरी क्या है? कोई बहुत यमदूत बाद में आएंगे क्या? सजाओं का अनुभव कब होगा? बाबा ने कई बार अव्यक्त रूप में हम सबको ये सिखाया है, बताया है कि बच्चे तुरंत प्रत्यक्ष फल मिलता है। श्रेष्ठ कर्म किया, प्रत्यक्ष फल खुशी मिल गई। अवज्ञा हुई, प्रत्यक्ष फल उसी समय दुख की लहर आ गई। योग नहीं लगेगा, मन एकाग्र नहीं होगा, शांति का अनुभव नहीं होगा, ऐसे लगेगा पता नहीं कुछ हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं पता है। क्या हुआ भाई, आप बताओ, चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों है? पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया, खुशी गायब हो गई। कई आत्माएं आप देखो, चलते चलते इतना प्रफुल्लित होती, इतना आनंदित रहती हैं, उनके चेहरे से भी वाइब्रेशन आते हैं खुशी के। वो जिधर से क्रॉस करती हैं, वो देखने वाले भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका चिंतन बड़ा सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। अगर सचमुच खुश रह करके खुशी का वायुमंडल बनाना है, तो अपने चिंतन पर बहुत ध्यान देना। जैसा सोचते हैं वैसा आभा मंडल क्रिएट होता है। ये जो हमारा ओरा है, हमारे सोचने से, हमारे चिंतन से निर्मित होता है। अगर आप बहुत अच्छे और खुशी के विचारों में रहते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आप जिस स्थान से क्रॉस करेंगे, जिस स्थान पर बैठ जाएंगे, चारों ओर उस ओरे का आभा मंडल आत्माओं को खींचेगा। बड़ा अच्छा है, देखता ही रहूं, उससे मिलूं, उससे बात करूं, उससे कुछ बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। हम यहां आपको प्रैक्टिकल दो तीन उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले यहां परदादी रहती थी। परदादी माना बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी। निर्मल शांता दादी कुछ बोलती ज्यादा नहीं थी, ओम शांति करेंगी और बहुत प्यार से दृष्टि देके अपने बाजू में बिठा लेंगे। इस स्थान पर अगर वो बैठ जाती थी तो उनको घेर लेते थे, जैसे कोई गुड़ रखा होता है, मक्खी आ जाती हैं चारों तरफ से। ये ऐसी दादियां अगर वो बैठ गई तो चारों तरफ से लोग घेर लेते थे, मिलने के लिए, देखने के लिए। क्या था उनके पास? शकल देखने के लिए नहीं, बाबा की बेटी है, इस भावना से नहीं। उनके जो वाइब्रेशन थे ना, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे, खुशी के, शांति के, पवित्रता के, वो आत्माओं को अपनी ओर खींचते थे। कई दादियों को देखो, उनके पास सब जाके खड़े हो जाएंगे, मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। और कई लोग अगर क्रॉस करेंगे तो उधर बैठे होंगे ना, तो वो देख न ले ऐसे क्रॉस करके निकल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? किसी से बात करने की खींच होती और किसी के सामने जाने से भय लगता है, पता नहीं क्या बोल देगा, जाएंगे पता नहीं क्या होगा, कहे या कुछ न कहे, आपसे कोई भय नहीं है, विरोध नहीं है और कहेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से आत्मा कोई को देख के बहुत प्रफुल्लित हो जाती और कोई को देख करके उसके अंदर भय पैदा हो जाता। कारण क्या है? तो उसके अंदर का चिंतन ना, व्यक्ति का चिंतन ही है ना, और कुछ तो नहीं है। हम सब अपने इस चिंतन पर ध्यान दें, यही हमारी पढ़ाई है। हम खुश नसीब हैं, खुशनुमा हैं, भगवान ने हमारी इतनी ऊंची तकदीर बनाई है कोई भी ख्याल मैं जहां तक ध्यान रखता हूं मेरे अंदर एक भी नेगेटिव ख्याल ना है किसी के प्रति, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया है। यदि मेरे अंदर वो चिंतन चल रहा है और वो सामने आएगा तो जरूर उसको भय लगेगा। और अगर सब निर्दोष हैं, बहुत बड़ी दृष्टि है ये, भगवान की दृष्टि है, हर बच्चा निर्दोष है, और उस निर्दोष दृष्टि के कारण उसको दोष नहीं दिखाई देते, इसलिए सब अपने लगते और सब कहते मेरा है, बाबा मेरा है, दादी मेरी है। क्यों ऐसा हमारे अंदर से निकला? क्योंकि हम उनके वाइब्रेशन से हमारे को खुशी की अनुभूति होती है। आप सब जिस स्थान पर रहते हैं, जिस सेंटर्स पर जाते आते हैं, अगर इतनी पॉजिटिव चिंतन की धारा, और कोई सेवा न करो, किसी को ज्ञान सुनाओ या न सुनाओ, संदेश दो या न दो, लेकिन एक पॉजिटिव चिंतन करने का अभ्यास करो, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं है। और अगर गलती दिखाई देती है, माना हम क्रिएटर डायरेक्टर को गलत कह रहे हैं। जब सब निर्दोष हैं तो फिर हमारे अंदर नेगेटिव क्यों चल रहा है? और अगर नेगेटिव चल रहा है तो माना मुझे सजा खानी पड़ेगी, और सजा है खुशी का गायब होना, तुरंत खुशी गायब हो जाएगी, योग नहीं लगेगा, भारीपन का अनुभव होगा, उदास उदास, मुंझे मुंझे, उलझे हुए, सुलझे हुए नहीं होंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी चिंतन मेरा नेगेटिव न चले, बहुत पॉजिटिव, बहुत शुद्ध, बहुत रमणीक, अंदर की वृत्तियों को इतना साफ करना है, इतना स्वच्छ बनाना है, इसलिए बाबा हमको इतनी मूल्यां सुनाता है, इतना श्रेष्ठ चिंतन देता है। स्वाध्याय का अभ्यास, स्वाध्याय और अध्ययन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अध्ययन तो हम कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं किताब का, लेकिन स्वाध्याय माना स्वयं स्वयं को पढ़ाना, मैं जो हूं जैसा हूं अपने आप को देखना, अपने आप से बातें करना, अपने आप को सुधारना, यह है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने वाली आत्मा, श्रेष्ठ मनन चिंतन करने वाली आत्मा, समय पर किसी को सुख देने वाली आत्मा सदा खुशी का अनुभव करेगी, वो खुश नसीब है। किसी को आप मदद नहीं कर रहे हो, किसी को समय पर साथ की जरूरत है, आप किनारा करके चल रहे हो, उसकी दुआएं आपको नहीं मिलेंगी और आपको उस खुशी का अनुभव नहीं होगा जो समय पर साथ देने वाले को खुशी मिलती है। इतनी अंदर से खुशी होती कि कोई कमजोर को आप मदद कर दो, किसी के दुख में आप थोड़ा सा उसको पूछ लो, किसी से बात कर लो, उसकी जो स्नेह की दुआएं हैं आपको खुश कर देंगे। इसलिए खुशी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस समय संगम युग पर जो आत्माएं खुश नसीब हैं, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होती। हर एक अंडरलाइन करके चलना कि मेरी खुशी कभी गायब न हो, क्योंकि यही दो चीजें योग का मूल आधार है, हल्कापन और खुशी। अगर जरा भी भारीपन है, कोई भी प्रकार का बोझ है, व्यर्थ का, नेगेटिव का, पास्ट का, किए हुए कर्मों का, बोझ की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर बोझ अभी तक भी मेरे ऊपर है तो उड़ सकेंगे, चल सकेंगे? बोझ को चेक करो, कौन कौन से बोझ हैं जो योग लगने नहीं देते। बोझ अर्पित करो, बोझ उतार दो, बाबा बैठा है लेने के लिए, दे दो, लिख के दे दो, है, चिंतन नहीं करो बार बार। इसलिए कहते हैं बीती को चितवो नहीं, कुछ भी बीती हुई बातें हैं, अच्छी बातें अगर कोई अनुभव की हैं, बीती हुई अच्छे अनुभव हैं, अच्छी घटनाएं घटी हैं, जो आपको याद करते ही खुशी में ले आए, ऐसी घटनाओं को रिवाइज करो, ऐसे अनुभवों को इमर्ज करो। हर पास्ट गलत नहीं होता, इसलिए जो पास्ट में बीता है, मान लो मधुबन की ऐसी कोई घटना है, आप बाबा से मिले हैं, दादियों से मिले हैं, क्लासेज में अनुभव हुए, योग में अच्छे अनुभव हुए, किसी आत्मा को कभी मदद की है, उसका सुख मिला है, जो उस अनुभवों को रिवाइज करो, और उसको रिवाइज करते ही आप देखेंगे अपार खुशी का अनुभव होने लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे मैं बहुत खुश नसीब हूं, कितना पुण्य किया है। इसलिए कहते हैं दान से पुण्य, पुण्य से खुशी। जो आत्माएं दूसरों को दान दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं, मदद कर रही हैं, उनको गुप्त रीति से पुण्य मिल रहा है, पुण्य जमा हो रहा है, और वो पुण्य आत्मा को खुश नसीबी का अनुभव कराता है। तो हम सब ब्राह्मण जीवन में खुश नसीब रहना चाहते हैं तो कोई भी नेगेटिव घटना को सामने नहीं आने देना। मान लो कोई ऐसी बातें बीत गई जो नहीं होनी चाहिए, जो मर्यादा के ब्राह्मण परिवार के लिए नुकसानकारक हैं, उन बातों को फुल स्टॉप, उनका चिंतन नहीं। लेकिन जो अच्छी अच्छी बातें बीती उनको याद करो, उनको लिखो, उनको रिवाइज करो, आप देखेंगे वो घटना याद आते ही आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, सब बातें भूल जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय इसी को हम कहते हैं। स्वाध्याय करने वाली आत्माएं, मनन चिंतन करने वाली आत्माएं, सुख देने वाली आत्माएं सदा खुश नसीब हैं और खुशी का अनुभव करती हैं। तो हम ब्राह्मण आत्माओं को दुख की दुनिया में रहते हुए, बाबा कहता है तुम दुख का किनारा छोड़ चुके हैं, कभी भी दुख की लहर ना आए। कोई कितनी भी कड़ी पेपर, कोई परिस्थिति आ जाए, कड़े से कड़ा पेपर आ जाए, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। कलप कलप पास हुए हैं, पास हो करके दिखाएंगे हमारा साथी कौन है। जो भगवान हमारा साथी है, सर्व समर्थ है, वो हमको गाइड कर रहा है, वो हमको साथ दे रहा है। इसलिए सदा ध्यान रखो हमारा साथी सर्व शक्तिमान है। अगर मैं कमजोर भी हूं तो भी मुझे पाल ले जाएगा, इतना शक्तिशाली बन करके बाबा के साथ से कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके हम खुशी का, सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए खुशी और संतोष ये सबसे बड़ी शक्ति है, हमें आनंदित बनाने में मदद करने वाली। आनंद की स्टेज खुशी से ऊपर की है, क्योंकि खुशी के भेंट में गम है, सुख के भेंट में दुख है, संतोष की भेंट में असंतोष है, आनंद की भेंट में कोई शब्द नहीं है। जब आत्मा सुख और खुशी से आनंदित हो जाती है तो एकदम परमानंद में खो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गया हुआ है, लेकिन योगियों का परमानंद गया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख हम साकार में अनुभव कर सकते हैं, आपस में मिलो जुलो, मनन करो, चिंतन करो, रूह रिहान करो, खुशी का अनुभव हो जाएगा। लेकिन परमानंद का अनुभव बस उस सुख में, उस मिलन में है। जब बाबा के प्यार में एकदम आत्मा समा जाती है तो परमानंद का अनुभव कराते हैं। तो अब समय है, बाबा कहता है ऐसे खुश नसीबी का अनुभव करते करते परमानंद में चले जाओ। ठीक है, तो आप सभी खुश नसीब तो हो ना। अगर कोई कमी हो ना, इस समय लगता हो कि ये कारण है जो मेरी खुशी गायब हो जाती है, हर एक कारण का निवारण है, हर समस्या का समाधान है, जहां कोई प्रश्न है वहां उत्तर है। इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रहने के लिए स्वयं को संपन्न बना लो, ये समय है। जहां जितना संपन्नता है वहां प्रसन्नता है, प्रसन्नता ही संतुष्टता का आधार है। ठीक है, और संतुष्ट है तो खुश नसीब है। तो आप सभी बहुत बहुत खुश नसीब बन करके, खुशियों के खजाने से भर के, संपन्न बन करके, एकदम निर्दोष दृष्टि वृत्ति बना करके यहाँ से खूब शक्ति लेके जाना। ओम शांति। अभी हम सभी 5 मिनट करेंगे, ठीक है। चंद्रकला बहन कहती 15 मिनट योग कराना। अब नाइट में अगर हम योग कराएंगे तो हो सकता है कोई सो जाए, नींद आ जाए। इसलिए अमृत वेले आप बहुत अच्छी तरह से योग करना, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए हम सब अपने अपने आसन पर बैठे। कौन सा आसन है? वैसे तो अभी आज सब फ्रेश लग रहे हैं, आज कोई सुस्त नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा क्लास। इस ब्रकुटी आसन पर बैठकर अपने चमकते हुए हीरे को देखो, दादी जी का एक पुरुषार्थ था, हम लोग लास्ट में दादी से रूहान करते थे, पूछते दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो, तो दादी कहती थी मैं अपने हीरे को अपने हथेली पर रखती हूँ और देखती हूँ चारों तरफ से इसमें कोई फ्लो तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, चारों तरफ से उस पर नजर डालती हूँ और फिर बाबा को कहती हूँ बाबा मुझे तो कोई दाग नहीं दिखाई देता, तो बाबा कहता बच्ची तुम बिल्कुल फ्लोलेस है, बेदाग हीरा है। तो आप सभी इस भट्टी से क्या बनेंगे, बेदाग हीरा। तो अभी अपने दाग हीरे को देखना, अगर कोई दाग हो तो अभी भी मिटा सकते हो, बाबा को लिख के दे देना बाबा ये दाग आप ले लो मिट जाएगा। तो अभी हम सभी अपने चमकते हुए हीरे को देखेंगे और बाबा की बहुत लाइट माइट की किरणें उस पर डालेंगे।
हमें खुश नसीबी से भरपूर करने वाले आदरणीय राजू भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मार्ग ये राह दिखाने वाला भी कोई चाहिए होता ना, प्रशस्त करने के लिए राह प्रशस्त कर दे कोई, तो हमें अपनी खुशी आंतरिक खुशी जो हमारा खजाना है उसका ही हमें याद दिलाना कहें या उसकी ही प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ाने में मदद करने वाले राजू भाई सचमुच दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया है।